الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى. اللہ تعالی ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اور تم کو نادار پایا تو غنی کر دیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی غریبی والی زندگی تھی. گزشتہ مجلس میں اس کی بہت ساری باتیں بتلائی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ چرانے کا کام بھی کیا، اور یہ اونٹ چرانے کا کام اس لیے کیا کہ کچھ اجرت اونٹ چرانے کے پیسے مل جاوے تو اپنے چچا ابو طالب کی مدد کرے، چچا کو کام آوے. اس درمیان پورے مکہ والوں میں آپ کا نام مشہور ہو گیا کہ آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں. مکہ کے اندر ایک بہت مالدار عورت رہتی تھی جن کا نام حضرت خدیجہ تھا. یہ عورت پہلے دو مرتبہ شادی کر چکی تھی، دونوں جگہ سے بیوہ ہو گئی تھی. پہلے شوہر سے نکاح کیا، بیوہ ہو گئی. دوسرے شوہر سے نکاح کیا، بیوہ ہو گئی. دو مرتبہ یہ عورت بیوہ ہوئی تھی. بہت مالدار عورت تھی، ان کا بزنس، ان کا کاروبار بہت بڑا تھا. مکہ کے لوگ تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے قافلے روانہ کرتے تھے، تو پورے مکہ کے لوگ جتنے مال کا قافلہ تجارت کا بزنس کا روانہ کرتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اکیلی اتنا بڑا تجارت کا مال روانہ کرتی تھی. اس سے اندازہ لگاؤ کہ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی بڑی مالدار ہوگی، کتنی कितना बड़ा उनका बिजनेस और कारोबार होगा कि पूरे मक्का के व्यापारी लोग, ताजिर लोग जितना अपना माल तिजारत के लिए बेचते, हजरत खदीजा अकेली इतना माल तिजारत के लिए बेचती। हजरत खदीजा को पता चला कि मेरे कुरैश खानदान में एक नौजवान है जिनके अब्बा अब्दुल्ला इंतकाल कर गए हैं, बहुत अमानतदार है, बड़े सच्चे हैं, इसीलिए उनको भी अपनी तिजारत में, अपने कारोबार में जोड़ना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि हजरत खदीजा और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान एक था। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के अब्बा खुवैलिद, उनके अब्बा यानी परदादा, उनका नाम कुसई था। और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे नंबर के दादा भी कुसई थे। गोया तीसरे चौथे दादा में हजरत खदीजा और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों मिल जाते थे, खानदान जुड़ जाता था, जॉइंट हो जाता था। तो हजरत खदीजा को बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली कि हमारे कुरैशी खानदान के हैं और नौजवान हैं, अमानतदार है, बहुत सच्चे हैं, तो कहा इनको भी कारोबार में जोड़ना चाहिए। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा ने कहलवाया कि आप मेरा माल लेकर तिजारत के लिए सफर करो, बिजनेस में, कारोबार में मेरे पार्टनर बनो, मेरे हिस्सेदार बनो, मैं सबको नफे में परसेंटेज देती हूं, टके देती हूं, फीसद से नफा देती हूं, तुमको भी मैं नफा दूंगी, बल्कि तुमको और ज्यादा दूंगी दूसरों के मुकाबले में, सबको जितने परसेंटेज, जितने टका, जितने फीसद नफा देती हूं उससे ज्यादा आपको मैं हिस्सा दूंगी, आप मेरा माल लेकर के जाइए। जब सामने से बिजनेस में ऑफर आई, कारोबार की ऑफर आई, तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल फरमा लिया। और कबूल इसलिए भी किया कि घरेलू हालात बहुत गरीबी में थे, अब्बा तो पहले ही इंतकाल कर गए, दादा जान भी इंतकाल कर गए, चचा अबू तालिब के यहां रहते थे वो भी गरीब थे, उनके भी बच्चे ज्यादा थे, इसलिए हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर लिया कि मैं भी खदीजा का माल लेकर के सफर करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में निकले। खदीजा बहुत होशियार औरत थी, उसने अपना एक गुलाम जो उनका खास था, विश्वासु था, जिस पर उनको बड़ा भरोसा और बड़ा एतमाद था, उस गुलाम का नाम था मैसरा। वो मैसरा को हजरत खदीजा ने साथ में भेजा। खदीजा की चालाकी का अंदाजा लगाओ, मैसरा नौकर को, गुलाम को साथ में भेजा और दो काम के लिए साथ में भेजा। एक तो ये कि पहली मर्तबा मोहम्मद से माल का व्यवहार कर रहे, पहली मर्तबा उनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, पहली मर्तबा इनसे भागीदारी की है, पता नहीं वो कैसी पार्टनरशिप निभाते हैं, उनके साथ मामला लेवड़ देवड़ कैसी रहती है, इसीलिए अपना खास मोहतमद विश्वासु भरोसे वाला आदमी मई सरा साथ में भेजा ताकि मेरे माल की देखभाल भी हो, माल की निगरानी भी हो, माल की हिफाजत भी हो। और दूसरा हजरत खदीजा का अंदर से मकसद ये था कि ये जो जवान मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मुत्तलिब मेरे कुरेश खानदान के हैं, उनके अखलाक कैसे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, उनकी जिंदगी कैसी है, वो भी मेरे सामने आ जावे। इसलिए कि आदमी सफर में साथ रहे तो पता चले कि आदमी कैसा है। ये दो मकसद से हजरत खदीजा ने अपने गुलाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भेजा। हुजूर माल लेके गए कारोबार करने के लिए, बड़ी अजीब शान, दोपहर में गर्मी होती, धूप हो जाती तो मैसरा, अभी तो हुजूर के नबी होने का ऐलान नहीं हुआ था उससे पहले की ये सब बातें हैं, तो दोपहर में अरब की गर्मी और जंगल का सफर, अरब में दरख्त और झाड़ भी नहीं होते दूर दूर तक, सख्त गर्मी, तो ये मैसरा नाम का गुलाम जो साथ गया था उसने एक अजीब चीज देखी कि दोपहर में जब सख्त गर्मी होती है तो दो नूरानी साये यानी वो फरिश्ते का साया के दो फरिश्ते आते हैं और हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के ऊपर वो साया कर देते हैं पूरी दोपहर की गर्मी में। अल्लाह के दो फरिश्ते आते हैं और हुजूर के सर पे साया कर देते हैं, हुजूर जहां भी चलेंगे वो फरिश्ते साथ चलेंगे और उनके परों के नूरानी साये में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहते थे, सफर करते रहते थे। शाम पहुंचे सीरिया तो वहां काफला रुक गया तो सामने एक झाड़ था दरख्त, उसके नीचे जाके हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे तो वहां एक क्रिश्चियन लोगों का एक पुराना चर्च था और उस चर्च के अंदर एक बड़ा पादरी रहता था जिसका नाम निस्तूरा था, वो बहुत बड़ा पादरी था, बड़ी रूहानियत वाला पादरी था, वो अपने चर्च में अपनी इबादत में रहता था। वो अपने चर्च में से बाहर निकला जो जनरली निकलते नहीं पादरी लोग, और बाहर निकल करके वो झाड़ के पास आया और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे को देखता है, बदन मुबारक को देखता है, उसको कुछ कुछ अंदाजा हो गया कि ये नौजवान जो इस झाड़ के नीचे बैठा है ये वही नबी है जो आखिरी जमाने में अल्लाह की तरफ से आने वाले हैं, ये वही नबी है। तो उस पादरी ने हुजूर को देख के एक अजीब बात पूछी, निस्तूर पादरी ने मैसरा को पूछा, इनकी आंख में लाल लाल दिख रहा है, क्या बात है? तो मैसरा कहने लगा कि ये लाल तो इनकी आंख में रहता ही है। फिर वो पादरी कहने लगा, इस झाड़ की एक हिस्ट्री है, इतिहास है, तारीख है, खूबी है कि इस झाड़ के नीचे अल्लाह के नबी ही बैठते हैं, नबी के सिवा कोई नहीं बैठा इस झाड़ के नीचे। और फिर वो पादरी कहने लगा कि अखीर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस झाड़ के नीचे बैठे थे, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई भी आदमी इस झाड़ के नीचे नहीं बैठा, ये नौजवान जो बैठे हैं लगता ऐसा है कि यही आखिरी अल्लाह के नबी बनने वाले हैं। पादरी पहचान गया हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरिया की मार्केटों में तशरीफ ले गए और हजरत खदीजा के माल में बिजनेस किया, कारोबार किया। अल्लाह ने हुजूर को बहुत होशियारी अता फरमाई थी, ऐसा माल सिलेक्ट किया, पसंद किया जिसकी निकास जल्दी हो जावे, जो जल्दी बिक जावे, ऐसा माल का सिलेक्शन किया। और सिलेक्शन करके अच्छा अच्छा माल खरीदा बेचा और नफा कमाया, ऐसा नफा कमाया कि हजरत खदीजा को आज तक किसी कारोबार में ऐसा नफा नहीं हुआ था जैसा नफा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमा के लाके दिया। कभी हजरत खदीजा को ऐसा नफा नहीं मिला जो नफा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमा करके ला करके दिया। बहुत कामयाबी से, बहुत चालाकी से, बहुत होशियारी से, बेहतरीन तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार किया और बहुत नफा मिला। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत का, बिजनेस का माल लेकर के मक्कतुल मुकर्रमा वापिस आए। जब मक्का वापिस आए, वही शान कि दो फरिश्ते ऊपर यूं पर खोल के हैं और हुजूर के सर पे साया है, इसी शान के साथ हुजूर मक्का तशरीफ लाए। तो हजरत खदीजा का मकान बड़ा था, उनको पता चला कि मेरा काफिला आ रहा है, मैंने मोहम्मद को बिजनेस के लिए पार्टनरशिप करके भेजा था, वो माल लेके आ रहे हैं। तो वो देखने के लिए घर के ऊपर चढ़ी, अपनी सहेलियों के साथ चढ़ी, तो देखा उसने दूर से, ओ हो, ये मोहम्मद तो बहुत अजीब है, इनके ऊपर फरिश्ते साया करते और फैलाते। तो उसने अपनी सहेलियों को बताया कि देखो ये आने वाले मेरे नौजवान को जो मेरा माल लेके बिजनेस करने गया था, उसके सर के ऊपर कैसा नूरानी साया है और उसको धूप भी नहीं लगती है। सब सहेलियों को बतलाया। हजरत खदीजा ने अपनी आंख से देखा और उनकी सहेलियों ने भी देखा कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के ऊपर दो फरिश्ते नूरानी साया करते हैं। इस शान से हुजूर मक्का आए और पूरा माल हजरत खदीजा का सौंप दिया और पार्टनरशिप के अंदर जितने परसेंटेज, जितनी टकावारी फीसद तय हुई थी, इतना हजरत खदीजा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। ये जो हजरत खदीजा का माल लेकर शाम गए और वहां से नफा कमा करके लाए और उसमें जो हिस्सा हुजूर को मिला, उससे खानदान की जरूरत बड़ी हद तक पूरी हुई और अल्लाह ने इसके जरिए से जरूरत पूरी फरमाई। वजदका आइलन फअगना, ये भी अल्लाह ने हुजूर के लिए गीना के मालदारी के दरवाजे खोले कि शाम से तिजारत करके आए। अब तिजारत करके आ गए, वक्तुल मुकर्रमा आ गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो ख्वाब में भी नहीं था, विचार में भी नहीं था, सोच में भी नहीं था कि मक्का की इतनी मालदार औरत इतने बड़े घर की औरत वो कभी मेरे साथ शादी करेगी, कभी हुजूर ने सोचा भी नहीं था। इसलिए कि हुजूर गरीब, चचा अबू तालिब भी गरीब, और हुजूर तो ऊंट बकरी चराते थे लोगों की मजदूरी लेकर के, और ये तिजारत करके टकावारी नफा कमा के लाए। कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी मालदार औरत मुझे मेरे साथ शादी करेगी, ख्याल में भी नहीं था। अब ये नफा का मामला हो गया, भागीदारी हो गई, हिसाब किताब हो गया, हुजूर को हिस्सा मिल गया, खदीजा अपने घर, हुजूर अपने घर। कुछ दिनों के बाद हजरत खदीजा ने खुद अपनी एक सहेली नफीसा नाम की थी उसको बीच में डाला और हुजूर की तरफ उसके दिल में इरादा आया। और इरादा होने का सबसे बड़ा रीजन ये, वजह और कारण ये कि हुजूर अमानतदारी, सच्चाई वो तो पहले से सुनी थी और देख भी ली, अनुभव में भी आ गई। वो जो नौकर गुलाम मैसरा साथ में भेजा था उसने आकर के रिपोर्ट दी हजरत खदीजा को, अरे ये मोहम्मद, इनके अखलाक तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत सच्चे हैं, ये तो बहुत अमानतदार है, ये तो बहुत नेक है, ये तो अल्लाह की मखलूक की हमदर्दी करने वाले, ये तो बड़े खिदमत गुजार है। वो जो गुलाम साथ में गया था उसने आकर के हजरत खदीजा को बहुत अच्छी रिपोर्ट दी, कह रहे मोहम्मद तो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब ये सब चीजें जमा हो गए, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, दूसरी तरफ अमानतदारी, तीसरी तरफ मैसरा गुलाम की रिपोर्ट कि ये तो बड़े नेक आदमी, अच्छे अखलाक के आदमी, सच्चे आदमी, मखलूक और लोगों की खिदमत और हमदर्दी करने वाले आदमी, सेवा करने वाले आदमी, और बहुत होशियार आदमी, बिजनेस भी अच्छी तरह करते हैं, बहुत मजबूती से करते हैं, ये अच्छी रिपोर्ट दी। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का तो काम बन गया, दो जगह वो बेवा हो चुकी थी, पहले शौहर के पास से बेवा हुई, दूसरे शौहर से बेवा हुई। तो खदीजा को भी जरूरत थी कि अब कोई ऐसा आदमी मिले जो उनके बिजनेस को संभाले, उनके बिजनेस को आगे बढ़ावे, उसको प्रगति और तरक्की देवे और उसको पूरी अमानतदारी से संभाले। ऐसे आदमी की खदीजा को भी जरूरत थी। तो अब उनके दिल में हुआ कि जिस मोहम्मद नाम के आदमी से मैंने पार्टनरशिप की है, मैं उसके साथ शादी कर लूं, निकाह कर लूं, तो कितनी अच्छी बात होगी। बस हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने सामने से पैगाम दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम लेके नहीं गए, हुजूर की तरफ से शादी की बात नहीं गई, हुजूर की फैमिली वालों ने बात नहीं की, हजरत खदीजा ने खुद बात भेजी कि मैं इस नौजवान से शादी करना चाहती हूं। और पैसों की लेन देन, पैसों का व्यवहार, कारोबार, तिजारत सब पहले हो चुका, नफे का हिसाब भी हो चुका। बाद में हजरत खदीजा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम दिया। अब इस वक्त कुछ जालिम लोग ऐसा कहते हैं, अल्लाह ऐसे फितनों के फितनों से मेरी आपकी हिफाजत करे, उनको भी अल्लाह हिदायत देवे। कितनी गंदी और गलत बात बोलते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा के माल की लालच में खदीजा से शादी की। कितने गंदे लोग, कितने जालिम लोग, कितने फितीन लोग कि खदीजा के माल की लालच में खदीजा से शादी की। हालांकि पूरी बात डिटेल आपने समझ ली کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کاروبار کیا، حضور کی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے حضرت خدیجہ نے ان کو پارٹنر بنایا اور ان کے ساتھ ایک ایک کاروبار کیا، آئے ہمیشہ کے پارٹنر نے ایک دھندہ کیا، اور حضور نے لا کر پورا مال سونپ دیا پوری امانت داری سے. اور دوسری بات یہ کہ حضرت خدیجہ نے شادی کا پیغام خود دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، حضور کے گھر والوں نے بھی نہیں دیا. اور تیسری بات یہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی دیکھ کر، امانت داری دیکھ کر، اچھے اخلاق دیکھ کر کے، نیکی دیکھ کر کے حضرت خدیجہ نے پیغام دیا تھا. اور ایک بڑی اچھی بات سمجھو، اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو خود کی فکر کم ہوتی ہے، اللہ نے ان کو ایسا دل دیا ہوتا ہے کہ خود دال روٹی جو ملی کھائی، جو کپڑے ملے پہنے، جو چاہے زندگی گزار لی سیدھی سادھی، لیکن دوسروں کی خدمت، دوسروں کو راحت پہنچانا، دوسروں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا، دوسروں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنا، یہ ان لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، ان کی فکریں ہوتی ہے، ان کی کوششیں ہوتی ہے، ان کی دعائیں ہوتی ہے کہ ہمارے ذریعے لوگوں کو راحت ملے، ہمارے ذریعے لوگوں کی خدمت ہوئے، ہمارے ذریعے دوسروں کی تکلیف دور ہوئے، دوسروں کا دکھ دور ہوئے. ایسے سوچنے والے اللہ کے بہت بندے ہوتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں بنائے گئے تھے تب بھی مخلوق کی خدمت، غریبوں کی خدمت، کمزوروں کی خدمت، اس کا بہت جذبہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن پیسے نہیں تھے. ایسے آپ خدمت کرتے بیماروں کی، کمزوروں کی، لیکن جو مال کی لائن سے خدمت کرنی چاہیے، پیسوں کی لائن کی، وہ خدمت کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا انتظام کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی ہو گئی. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ خدیجہ جیسی مالدار عورت سے نکاح ہوا لیکن خدیجہ کی دولت کا ایک پیسہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نہیں خرچ ہوا. اتنی مالدار عورت، اتنی مالدار عورت سے نکاح کیا لیکن اپنی ذات پر اس مالدار عورت کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا. اسی لیے میں امت کے جوانوں کو نصیحت کرتا ہوں، کسی لڑکی سے مال دیکھ کے شادی مت کرنا کہ یہ مالدار گھر کی ہے اور وہ گھر سے پیسے لائے گی اور اس کی دولت مجھے کام آئے گی، اس کی دولت سے میرا کام بنے گا، اس نیت سے کبھی نکاح مت کرنا. حدیث میں آتا ہے جس نے کسی مال عورت کی مالداری دیکھ کر شادی کی، مال کی لالچ میں شادی کی، تو اللہ اس کی فقیری اور محتاجی کو بڑھائیں گے. دینداری دیکھ کر کے نکاح کرنا، یہ بہت مالدار گھر کی لڑکی ہے، میں مالدار گھر میں شادی کروں، میں بھی مالدار ہو جاؤں، اس چکر میں کبھی مت پڑنا. خدیجہ جیسی مالدار عورت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا لیکن اس کی دولت میں سے ایک پیسہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خرچ نہیں ہوا. بلکہ اب حضور کا کام کیا بن گیا کہ وہ غریبوں کی خدمت، کمزوروں کی خدمت، غلاموں کی خدمت، بیواؤں کی خدمت، اس میں خدیجہ کا مال لگا، دین کے لیے مال لگا، حضور کی ذات کے لیے نہیں لگا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، इसीलिए एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सबसे ज्यादा फायदा अबू बकर सिद्दीक के माल से पहुंचा, और इधर हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के माल से, कि खदीजा से निकाह हुआ, तो अब खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को हुजूर बता देते ये गरीब है, ये मोहताज है, ये बेवा है, ये फकीर है, यहाँ खर्च करो, यहाँ खर्च करो, तो गरीबों का काम बनता गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का माल भी गुलामों पर लगा, गरीबों पर लगा, मोहताजों के ऊपर लगा। तो गर्ज हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी गरीबी वाली जिंदगी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने ये मुल्क शाम की तिजारत का सफर उसकी बरकत से एक दर्जे की घिना मालदारी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। उसी को अल्लाह ने आयत में फरमाया وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى। हुजूर की तो दुआ हमेशा ये थी, اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واشرني في زمرة المساكين। अल्लाह मैं मिस्कीन बन के जिंदगी गुजारो, मिस्कीन बन के मेरी मौत आवे, और कयामत के दिन मिस्कीनों के साथ मेरा हिसाब किताब होवे। ये तो हुजूर बाकायदा अल्लाह से मांगते थे अपनी दुआओं के अंदर। अल्लाह हम सबको हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाऊं।